ओके
ओके गाइस, वी आर लाइव नाउ एंड आई एम फिजान
और मेरा नाम शहवार अहमद है, मुझे कोई मुझे लोग शहरी भी कहते हैं।
और हम लोग लेकर आए आपके लिए पॉडकास्ट नंबर 5। और आज हमारे साथ जो हैं अहमद अब्दुल्ला भाई होंगे फ्रॉम बर्लिन। एंड जी अहमद अब्दुल्ला,
इंट्रोड्यूस आप लोगों ने करवा दी, मेरा नाम
आप
अहमद
अपने
है।
बारे
नहीं
में
नहीं आप
इलेबोरेट
ये बताए ना,
करें।
आपने आप क्या कर रहे हैं, मतलब बर्लिन में क्यों हैं आप?
बर्लिन में मैं जॉब कर रहा था अपन की रिसेंटली, देन कोरोना हैपेंड, तो अभी अभी हम नई जॉब की तलाश में। लेकिन प्रीवियसली मैं इससे पहले एज अ बैकएंड डेवलपर काफ़ी देर तक काम करता रहूँगा, लेकिन आई एम ट्रांजिशनिंग माई करियर टुवर्ड डेटा साइंस। और इसके अलावा ऑन द साइड हसल, आई एम राइट नाउ अ वॉनप्रेन्योर, आई एम प्लानिंग टू बी एन एंटरप्रेन्योर। दिस इज समथिंग जो मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम लोग पूरी पॉडकास्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो
एग्जैक्टली
साथ साथ
तो आज का हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक जो है वो है स्टार्टअप कल्चर। केओटिक कुछ लोग बोले थे, टॉक्सिक रख लेते, मैंने बोला टॉक्सिक कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो केओटिक स्टार्टअप कल्चर स्पेशली इन पाकिस्तान। तो इसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि भाई पाकिस्तान में स्टार्टअप्स किस तरीके से जो है वो अप्रोच करते हैं चीज़ों को, क्या क्या गलतियाँ करते हैं, और हमारी नज़र में, हम लोग इतने एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन जितनी हमारी नॉलेज के हिसाब से जो है वो डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो अब्दुल्ला भाई, फिर आप मुझे ये बताएं कि कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान में स्टार्टअप कल्चर
कैसे
को?
देखते हैं अब्दुल भाई, आप देखते कैसे हैं?
तो मैं देखता तो आंखों से ही हूँ, लेकिन
आपकी
वैसे
नजरें
जैसे
साफ
आप,
हैं।
मैं जनरली अपना ओपिनियन दूंगा, क्योंकि मैंने कभी फर्स्ट हैंड स्टार्टअप के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया पाकिस्तान के अंदर। लेकिन लुकिंग एट फ्रेंड्स, खासतौर पे आईटी सर्किल के अंदर, अक्सर लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कुछ आइडियाज़ को लेके, और एकदम से एक हाइप आती है काम करने की कि लेट्स डू दिस, और फिर हम लोग उस चीज़ पर काम शुरू करेंगे, और आस्ते आस्ते द मोटिवेशन फेड्स आउट, और फिर आस्ते आस्ते जो है ना, जो मोटिवेटेड भी होगा काम करने के लिए वो आस्ते आस्ते चला जाएगा।
शुरू शुरू में या
और मुझे लगता है कि इसमें जो मेन रीज़न है वो ये है कि द मोटिवेशन इज़ नॉट ड्रिवन बाय कि हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, मोटिवेशन इज़ ड्रिवन बाय अ ड्रीम कि एक स्टार्टअप का सीईओ या स्टार्टअप का फाउंडर किस तरह का लगता है। तो अगर अगर आप वो बनना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है देर आर अदर वेज टू डू दैट। लेकिन ये कि अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको लोकल मसाइल उठा के देखने चाहिए, और मेरा ख्याल है जैसे हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री के, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि हम लोग के पास बहुत यूनिक किस्म के प्रॉब्लम्स होंगे। हम लोग के पास बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं, और हम लोग उनको देख के वहाँ से अपने जो है स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं।
ये आपने जो बात की है इसमें मैं कुछ ऐड करूंगा कि आपने बताया ना कि लोग बोलते हैं कि सीईओ बन जाएंगे, और तो इस चीज़ पे फोकस ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट पे फोकस कम होता है। और दूसरी चीज़ जो आपने बोली बहुत अच्छी कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं और अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है हमारे पास,
बहुत
हमें
ज़्यादा
सिर्फ रेप्लीकेट करनी है चीज़ें। भाई नया नया आइडिया भी नहीं चाहिए, आप देखो क्या कर रहे हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर जर्मनी में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, उसको देखें और देखें क्या वो किस तरीके से फिट हो सकता है हमारे हमारे इस सेटअप के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। तो
अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ ऐड करूँगा। एक और इंटरेस्टिंग बात ये कि जो ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर स्टार्टअप्स हैं जो इवन सक्सेसफुल भी हैं, वो ऑलरेडी ये कर रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर स्टार्टअप्स वो लोग आइडियाज़ कॉपी करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से और अपने कंट्रीज़ के अंदर जो है उनके इम्प्लीमेंट करने कोशिश। अब उसमें इशू ये होता है कि वाई दो स्टार्टअप फेल्स, इशू ये है कि वो लोग मार्केट एनालिसिस नहीं करते, क्योंकि यहाँ की मार्केट पाकिस्तान की मार्केट से डिफरेंट है। पाकिस्तान में लोगों की कुव्वत
एग्जैक्टली
खरीद थोड़ी है, और फिर कुछ इस तरह की चीज़ें जो उस टाइम पे उनको नहीं चाहिए होती, जो कि वो मतलब वेंचर कैपिटल से पैसे तो शायद वो उठा लें, लेकिन कल को वो डिलीवर करेंगे और प्रोडक्ट सेल होती है या नहीं होती। तो मार्केट एनालिसिस और प्रोडक्ट को आप मोनेटाइज कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है
बहुत
जो
ज्यादा
अक्सर स्टार्टअप जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं पाकिस्तान के
इंपॉर्टेंट
अंदर। आई डोंट वॉन्ट टू वर्क इन ए स्टार्टअप जिन्होंने अपनी मोनेटाइजेशन प्लान नहीं की हुई, तो दिस इज समथिंग दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। बहुत सारे तरीक़ों से मोनेटाइजेशन हो सकती है, लेकिन आप पहले देखेंगे मार्केट किस तरह पैसे देने के लिए आपको तैयार है।
तो
अच्छा,
शायद
अगर इसको ब्रेक डाउन करूं
इसके
मैम, अगर मैं
बारे
इसको ब्रेक डाउन करूं तो सबसे पहले आइडिया पे आपने बात की कि रेप्लिकेट करना है, सही है,
में जानने।
लेकिन आप आइडिया जनरेट ही तब करते हो जब आपके पास कोई प्रॉब्लम हो, उसी का सोल्यूशन आपने ढूंढना है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में, अगर मैं चलो साउथ एशिया की भी एग्जाम्पल ले लूँ, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में आइडियाज की कमी होनी नहीं चाहिए, तो फिर भी मसला ऐसा क्या है? मतलब
बिल्कुल ऐसी बात है, आई थिंक जो माइंडसेट जो है ना वो जो पाकिस्तान में कल्चर है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे जॉब सिक्योरिटी चाहिए और मुझे एक परमानेंट पेचेक चाहिए, ओनरशिप नहीं है प्रॉब्लम्स की, ओनरशिप नहीं है कि मैं खुद आगे बढ़ के प्रॉब्लम सॉल्व करूं,
खातून नहीं मिलती ना फिर।
हाँ ये इशू है ना, तो ये कल्चर ब्रेक करने की जरूरत। अच्छा आई रिसेंटली केम अक्रॉस एन आइडिया दैट इज कॉल्ड माइक्रो सैस, और माइक्रो सैस इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, लेकिन छोटे प्रोजेक्ट्स, दे आर नॉट प्रोजेक्ट्स जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रेवेन्यू बना रहे हैं, लेकिन ये कि वो एज अ साइड इनकम 100,000 dollars या euros आपको कमा के दे रहे हैं, तो एक साइड इनकम आपकी बड़ी अच्छी बनती है। और मैंने अक्सर प्रोजेक्ट्स इस तरह के देखे हैं जो इतने से शुरू होते हैं और फुल ग्रोन कंपनीज बन जाते हैं, और इनके ज्यादातर बिल्कुल छोटे से, मतलब एक बहुत छोटी सर्विस दे रहे होंगे, बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इतनी छोटी चीज जो जिसमें आप स्पेशलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने रिसेंटली एक स्टार्टअप देखा जो सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइड करता है और वो है चैटबॉट्स, वो वेबसाइट के ऊपर चैटबॉट्स बना के देता है।
अच्छा मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा आपका एक ओवरव्यू थोड़ा सा शायद मिसिंग हो गया, लेकिन मुझे पता है आप उसमें डीपली बात करना नहीं चाहेंगे इस पॉडकास्ट में, लेकिन आपका जो बैकग्राउंड है वो आप थोड़ा सा मतलब आप खुद से बता दें या मैं बताऊं, तो लोग
क्या बताना चाहते हैं आप?
नहीं नहीं, क्योंकि लोग ये बोलेंगे कि यार ये एक नॉन एक्सपर्ट बंदा है जो वो मतलब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड स्टार्टअप पे कैसे कमेंट कर सकता है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं, हमारे अहमद अब्दुल्ला भाई जो है माशाल्लाह से डेटा एंड नॉलेज इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डेटा एंड नॉलेज इंजीनियरिंग के अंदर MSc कर रहे हैं मार्कटीबर्ग से, ऑटोफोन गुरे के यूनिवर्सिटी से, तो इनकी काफी एक्सपर्टीज है और डेवलपमेंट साइड भी काफी एक्सपर्टीज है, और वो जो मीम हमने शेयर की थी पोस्टर पे वो भी अहमद अब्दुल्ला भाई से रिलेट करती है, क्योंकि अहमद अब्दुल्ला भाई जो है काइंड ऑफ एक्सपर्ट थे हमारे पाइथन के मागदी पर जो सबको यही बोलते थे पाइथन पे आ जाओ ब्रो,
पाइथन पे आ जाओ।
खैर तो सही, हम अपनी जितना हमें हमारी एक्सपर्टीज है उसके हिसाब से बात करने की कोशिश करेंगे। खैर मेरी स्टार्टअप के साथ काफी लास्ट 5 years से मैं मल्टीपल स्टार्टअप्स के साथ हूँ, तो ये है कि थोड़ी नॉलेज है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसी के मुताबिक जो है बात करने की कोशिश करूँगा। जैसे आपने बात की ना कि फोकस नहीं होते, सही है, सिर्फ इस गलत चीज़ों पे, तो वो क्या होता है, शुरू शुरू की एक्साइटमेंट होती है और नया नया आइडिया आता है, और आपको ऐसा लगता है कि इससे अच्छी प्रोडक्ट तो कोई हो ही नहीं सकती। सही है, मतलब ये तो अंधी मचा देगी मार्केट में, लेकिन कस्टमर को ऐसा नहीं लगता, पहली बात ही है। तो आपको, और फिर आपने एक बात की, लोग मार्केट नहीं देखते, मार्केट सेगमेंट डिवाइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सारे के सारे पैरामीटर्स पता होने चाहिए जिस चीज के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं। सही है, पहले तो ये कि प्रोडक्ट बना क्या रहे हैं, क्या उसकी जरूरत भी है या नहीं, जो कि आपने मेंशन किया, कोई भी प्रोडक्ट बना के बैठ जाएंगे और उनके जो है ना वो दिमाग में ऐसा हुआ कि हमने जो है पता नहीं क्या जो है वो बना लिया, और उसके ऊपर फिर जो है वो अपने ख्वाब जो है वो बसाना शुरू कर देंगे, और फिर वो महल टूटता है, और फिर वो काफी जो है ना मुश्किलात का सामना होता है, कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या उस प्रोडक्ट की जरूरत है, सही, आप जो आइडिया रेप्लीकेट कर रहे हैं क्या उसकी वाकई जरूरत है, और वो क्या चेंजेस हैं जो उस प्रोडक्ट के अंदर रिक्वायर्ड हैं करने जो आप करेंगे अपनी सोसाइटी को देखते हुए, और उसके बाद रियलिस्टिकली आपने सोचना चीज़ों को, एक्साइटमेंट में आके नहीं सोचना, सही। तो ये चीज़ें होती है जो मैंने देखी हैं, काफी लोग गलतियां करते हैं इस चीज़ के अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा।
यार एक अजीब सा मसला है पाकिस्तानियों के साथ ना, सॉरी मैं वो वाली बात, एक मजाक अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तानियों के साथ एक अजीब सा मसला है थोड़ा सा ना, कि वो वर्ड्स तो नहीं यूज करने चाहिए, वो मैं यूज भी नहीं कर सकता, वरना वो एग्जांपल बड़ी अच्छी है,
कर लो मशहूर हो जाएंगे
नहीं फिर वो गुंडे बन जाएंगे मेरे ऊपर, लेकिन मतलब आसमान पे उड़ जाऊंगा, खिड़की से बाहर कूद जाऊंगा,
खड्डे खोद दूंगा, ये
तो मतलब आइडिया जनरेशन इस तरह की क्यों होती है कि मतलब वो इवेंचुअली कोलैप्स ही हो, मतलब 3 बंदे होते हैं, लेकिन शेख चिल्ली की मिसाल ऐसी होती है कि उसने ख्वाब में जो है वो कंपनी भी बना ली होती है दूसरे दिन।
चलिए देखिए यही चीज बताने के लिए तो हम बैठे हैं यहाँ पर।
I think at the end मसला यही है कि motivation internally जो होती है वो different होती है product से, तो अगर आपकी इंटरनल मोटिवेशन ये है कि आप कोई मसला सॉल्व करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल है फिर वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस कर सकती है, और इट शुड बी अ थिंग जिसके साथ आप कंसिस्टेंट रह सकें। फॉर एग्जांपल अगर मैं आज कोई आईओटी का बिजनेस शुरू कर दूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं इतना पैशनेटली उसको फॉलो अलॉन्ग कर सकता हूँ, क्योंकि मतलब वो मेरा एरिया नहीं है। लेकिन आज अगर मैं कोई एक छोटा सास बिजनेस शुरू करता हूँ तो मे बी आई वुड स्टिक टू इट मोर, क्योंकि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इस तरह के एरिया के अंदर काम करने जो जिसका मुझे आइडिया है।
तो मतलब मैं ये समझू ना कि लैक ऑफ ट्रेनिंग है, जैसे माया ने बताया, आपने बताया, लैक ऑफ ट्रेनिंग है या लैक ऑफ एजुकेशन है। तो जब लैक ऑफ ट्रेनिंग और एजुकेशन की बात आती है तो इनक्यूबेशन सेंटर्स का जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है कि मतलब इनक्यूबेशन सेंटर्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, जो पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है, पाकिस्तानियों को पता है, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा मतलब कैटेगोरिकल कोलैप्स है इतना बड़ा।
आई थिंक इंक्यूबेशन फैसिलिटी सुपर इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कुछ लोगों का बिलीव है कि इंक्यूबेशन फैसिलिटीज के साथ ही ग्रो कर सकते हैं। आई थिंक ये एक माइंड सेट है कि इंक्यूबेशन फैसिलिटी के बगैर हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि आप छोटी प्रोडक्ट के साथ शुरू करें, मिनिमम अपनी वाइबल प्रोडक्ट जो है उसको क्रिएट करें, उसको फिर एक्सपैंड करने की कोशिश करें, और जितनी जल्दी आप मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस होंगे उतनी जल्दी आपको पता लगेगा कि कस्टमर के पेन पॉइंट्स क्या हैं और उनको कवर करने की कोशिश करें। इंक्यूबेशन फैसिलिटी जो है ना, there are two ways in which you can grow your startup. एक जो है उनको bootstrap business बोलते हैं, एक बोलते हैं जो venture capitalist से जाके पैसे उठाते हैं, फिर आपको ownership अपनी divide करनी पड़ती है। कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते, क्योंकि जब venture capitalist आपकी startup के अंदर पैसे डालता है तो they expect कि आप 3-4 सालों के अंदर इतने पैसे बनाएंगे कि उनके पैसों की कदर होगी। ऑन दी अदर हैंड अगर आप bootstrap business शुरू करते हैं तो मेरा ख्याल है जिस तरह के हम लोग के छोटे मसाइल हैं, बूटस्ट्रैप जो सारे के सारे हम लोग के पास आइडियाज़ हो सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम लोग के पास मसाइल इतने बड़े नहीं है कि हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, वो छोटी कील तक पाकिस्तान में नहीं बनता, कील की फैक्ट्री कितनी बड़ी होगी, मेरे ख्याल कॉटेज फैक्ट्री एक रूम के अंदर लग सकती है। तो इसके लिए कोई रॉकेट साइंटिस्ट भी नहीं आपको चाहिए, इतना मुश्किल काम तो नहीं होगा। आप एक सेकेंड हैंड मशीन इम्पोर्ट कर लें और कील बनाना शुरू कर दें, उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल आता है वो या पाकिस्तान में अवेलेबल होगा या आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो
मतलब इसकी एजुकेशन के लिए क्या करेंगे, मतलब चलो सही है, मैं अगर आपने बात की इंक्यूबेशन सेंटर्स की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन जो एक प्रॉपर प्रोसीजर है जैसे बाय बुक जर्मन्स फॉलो कर रहे हैं या यूरोपियंस फॉलो कर रहे हैं, जैसे माया ने पिछली पॉडकास्ट में भी मेंशन किया था कि ये लोग बहुत बाय बुक होते हैं, लेकिन ये बुक स्ट्रक्चर सिखाएगा कौन? चलो अगर किसी ने बुक स्ट्रक्चर फॉलो करना है तो ये स्ट्रक्चर सिखाएगा कौन?
सिखाएगा कौन, मतलब ये तो फिर डिपेंडेंट होने वाली बात है। या तो आप इंस्टीट्यूट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के अंदर ट्रेन करना शुरू करें कि जॉब के साथ साथ ऑल्टरनेटिव भी हैं बिजनेस के, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर रिलाय नहीं करते। तो मैं ये कहूँगा कि आप पाकिस्तानी कल्चर के अंदर ज़्यादातर लोग जो है ना वो गाने सर्च कर लेंगे, मूवी सर्च कर लेंगे, सीजन सर्च कर लेंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन ये सर्च करेंगे। आप जाके इंफॉर्मेशन सर्च करें तो काफी ज्यादा फ्री कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है इवन यूट्यूब के ऊपर कि बिजनेसेस
के, मतलब वो एक डिग्री भी तो आई थी ना अहमद भाई, 6 महीने में डेटा साइंटिस्ट बन जाओ, हाँ, वो वाली डिग्री तो नहीं है,
मतलब एक रात में एमबीए,
एक रात में एमबीए। तो इस तरह के काफी ज्यादा आइडियाज हैं, मतलब रीजन कहने के लिए नहीं है कि आप डिग्रीज फॉर अल्टरनेटिव देख सकते हैं, लेकिन इम्पॉसिबल चीज नहीं है। आपको कम से कम ओवरऑल आइडिया हो जाता है कि चल क्या रहा है मार्केट में और आपको कौन से स्किल्स चाहिए। फॉर मी, मैं पहले फजान के साथ डिस्कशन कर रहा था, उसके मैं बता रहा था कि अप अंटिल रिसेंटली मैं ये समझता था कि सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स जो हैं, जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए। पर लेटली मैंने रियलाइज किया कि उसके साथ साथ आपको प्रोडक्ट ओनरशिप लेना और प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज़ें डिज़ाइन करनी है, बिजनेस डिसीजन बहुत सारे लेने वाले होते हैं कि कस्टमर आपका क्या क्या पसंद करेगा, उसके लिए क्या क्या करना है। तो ये आपकी एक्सपर्टीज से बाहर निकल के भी आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। जो सेकंड ईयर की चीज़ें होती हैं सीखने वाली, वो आपको किसी स्कूल कॉलेज के अंदर नहीं पढ़ाते। फाइनेंस की जो खासतौर पर फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, आपने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो उसकी प्राइसिंग किस तरह की रखनी है, तो ये चीज़ें आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेंगी।
अच्छा, तो मैं यहाँ पर एक बात ऐड करूँगा कि शेरी के क्वेश्चन के अंदर ही कि कहाँ से हासिल करेंगे, और उसी चीज़ को कनेक्ट करूँगा इनक्यूबेशन सेंटर्स के साथ। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये होता है कि भाई नॉलेज जहाँ से मिल रही है ले लो, सही है। और इनक्यूबेशन सेंटर्स का जो मतलब एक सीन ये भी होता है कि वो लोग कोर्सेज करवाते हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं उनको सिखाई जाती हैं, जैसे लीन स्टार्टअप मेथडोलॉजी हो गई एक बहुत मशहूर, सही है। तो वो उसके पूरे पूरे कोर्सेज आते हैं और उसके ट्रेनर्स बाहर से आते हैं, वो ट्रेनिंग देके जाते हैं उस इंक्यूबेशन सेंटर के जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं उनको, तो उससे कुछ ना कुछ तो लर्न होता ही होगा। और जो आपने बात की छोटी छोटी प्रोडक्ट में, तो ये बोलता हूँ कि मार्केट भी इनिशियली छोटी टारगेट करें, सही है, अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। प्रोडक्ट तो छोटी है, सही है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक होनी चाहिए और आपकी मार्केट सेगमेंट एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। और इसकी अब मैं अपनी कंपनी की मशहूरी करूंगा, सही है, जैसे अपने टेक लॉग, सही है, अब हम चाहते तो बड़े पैमाने पे लॉन्च करते हैं, सही है, फुल मार्केटिंग। अभी हम क्या करें, हमने देखा कि फीडबैक क्या आता है, छोटे छोटा छोटा, सबसे पहले हमने इंस्टाग्राम पे जो है ना वो इसको स्टार्ट किया, सही है, और हमने फीडबैक देखा। ये यही तरीका होता है स्टार्टअप को लेकर चलने का, कि आप सबसे पहले छोटे लेवल पे देखते हो, कस्टमर फीडबैक लेते हो और उसको फिर फीड फॉरवर्ड के अंदर कन्वर्ट करते हो, सही है। अब लोग बोलते हैं कि हमने सर्वेस किए हैं और हमने ये सर्वे किया और उससे इतने रिजल्ट आ गए, और सर्वेस हमेशा सही नहीं होते हैं, हमेशा मैं ये लोगों को समझाता हूँ, क्योंकि जब आप सर्वे भेजते हैं तो वो एक जो यूज़र जो सर्वे फिल करता है वो एज अ रैशनल थिंकिंग होती है उसकी उस वक्त, और वो जो है ना वो बायसनेस की तरफ चला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या बोलते हैं, किसी किसी खातून ने आपको बोल दिया कि ये जरा सर्वे फिल करे, तो आप वैसे ही बायस हो जाते हैं यार, चलो
वो फिर खातून आपसे सारे भाइयों के, पूरे खानदान के, पूरी कास्ट के, सब के फिल करा रही होती
है। उससे नुकसान क्या होता है, उससे नुकसान ये होता है कि जिस सर्वे को आप ट्रू डेटा लेके चल रहे हो वो ट्रू डेटा नहीं होता, सही है। तो फिर उसका आसान साल क्या है कि आप छोटी मार्केट टारगेट करो विद लेस इन्वेस्टमेंट, छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी प्रोडक्ट को एज अ टेस्ट फेंको उस मार्केट के अंदर और देखो फीडबैक क्या आता है। अगर फीडबैक अच्छा आता है तो फिर उसको एक्सपेंड करो, इन्वेस्टमेंट भी डालो, माइक भी खरीदो, कैमरा भी लगाओ, सही है। तो ये सारी चीजें,
अगर तुम फेक दोगे तो बेटा तू किसी की लग जाएगी
नहीं ना फेंकने से मेरी मुराद है कि उसको लॉन्च करें, सही
है। हाँ, तो मतलब थोड़ा सा लगना चाहिए ना, थोड़े थोड़े बर्गर हम भी हैं
तो फिर मैं वो मुंह करके बात करूं okay. तो, खैर क्या बोलते हैं, नो हार्ड फीलिंग फॉर बर्गर बॉयज, बट ये मेरी थिंकिंग है और यही एक जनरल थिंकिंग होती है जो सिखाई जाती है आपको इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर भी, कि जरूरी नहीं है कि आपने जो है वो पहले दिन ही जाके अमेजोन जैसा बिजनेस खड़ा कर देना। अमेजोन भी तो एक बुक स्टोर था सबसे पहले, और वो उस वक्त अगर सोचें तो मतलब अगर उस वक्त जो लोग होंगे वो शायद सोच भी नहीं सकते होंगे कितना बड़ा जो है ये बिजनेस बनेगा। तो छोटा स्टार्ट करें और स्पेसिफिक स्टार्ट करें, क्लियर रखें चीजों को माइंड के अंदर, तो इस तरह के मसले मसाले से हम बच सकते हैं।
आई थिंक एक और चीज जो है वो ये है कि जब जब एक कोई मेरे आपके जैसा बंदा स्टार्ट लॉन्च करने के बारे में सोचता है तो हम लोगों को अपने बेंचमार्क जो है ना अमेज़न फेसबुक नहीं रखना चाहिए।
एग्जैक्टली, ये मेरा पॉइंट है।
सो ग्राउंड के आप उनके लेवल तक अभी नहीं पहुंच सकते, मतलब पॉसिबली पहुंच भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कि अगर आप बेंचमार्क इतना ऊंचा रख देंगे कि आपको खुद पता होगा कि मैं वो अचीव नहीं कर सकता, तो मतलब फिर आपकी मोटिवेशन बहुत जल्दी डाउन होना शुरू होगी। या अगर आप ड्रीम्स देख रहे हैं कि मैं एक दिन अमेज़न के मुकाबले में खड़ा हो जाऊंगा, तो आपके ड्रीम्स भी इस तरह के होने चाहिए जो आपको पता हो कि मैं
यहाँ पर मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, सही है, इस बात पे बड़ा जो है ना ड्रीम बिग सोचें, सही है, अपने आप को विजुलाइज करें, लेकिन उसको लेकिन रियलिटी से जो है ना अपने आप को
डिस्टेंट ना करें, मतलब एग्जैक्टली वही पॉइंट है कि यार आप देखो आप डिल्यूजनल नहीं हो रहे,
बिल्कुल
आपको पता है कि आप क्या सब ले रहे हैं। शेरी को शेयर करना चाह रहे हो,
हां तो सॉरी नहीं वो मैं यही कंटिन्यू कर रहा था, बात वही ऐड कर रहा था कि Amazon हो गया जेफ बेसोस, और आपका अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट के गेट्स भैया, तो भैया जी जो हैं, दोनों भैया जी जो हैं,
लड़का भी तो है वो, क्या नाम है, एलन,
अपना लड़का
पप्पू का लड़का
इलोन मस्क।
तो यार ये लोग जो है ना अगर हम देखें तो मतलब स्टोरी तो बहुत खूबसूरत क्रिएट की हुई है इनके लिए कि भाई यहाँ से स्टार्ट हुआ, इतना वेंचर कैपिटल था, ये था, मेजॉरिटी इन सब ने अपना बूटस्ट्रैप से स्टार्ट किया है, सबके अम्मा अब्बा बहुत अमीर थे, मतलब रियलिटी वाली कंडीशन ऐसी कोई भी नहीं थी कि यार वो उसके पास खाने के पैसे नहीं थे, तो कपड़ों में दो छेद हुए हुए थे और वो निकला और उसने चांद पे भेज दिया, उसने मार्स पे भेज दिया, तो ऐसी एग्जांपल कौन सी मिलेगी। मतलब
उसके अलावा मेरे ख्याल ये चीज भी इम्पोर्टेंट है कि यार आप ये भी रियलाइज करें कि वो लोग अपनी फील्ड्स के अंदर बड़े एजुकेटेड थे। आप यहाँ पे पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट होकर कहते हैं कि मैं फेसबुक का मुकाबला बनाऊंगा, वो भाई हार्वर्ड से ड्रॉप आउट हो।
हां उसका ड्रॉप आउट का लेवल भी तो देखे ना
वो देखे कि वो इतना लाइट था कि वो आईवी लीग यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा था। इसी तरह बिल गेट्स वो भी काफी लाइक था. इलॉन मस्क की तो मैंने बुक पढ़ी हुई है, उसकी जो लाइफ स्टोरी है उसमें जितनी वो सेकंड एमएस कर रहा था जब उसने ड्रॉप आउट किया था. तो अब ये शहरी भाई को थोड़ी मोटिवेशन है कि सेकंड पीएचडी ड्रॉप आउट कर.
अस्तग़फ़िरुल्लाह.
तो पता चल रहा है कि बंदा ड्रॉप आउट हो रहा है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ चीचावदनी से. और एक्सपेक्टेशन, लेकिन यार मैं इन चीजों को देखता हूँ यार, सही है, बड़ा सोचो, अपने आप को विजुलाइज करो अच्छी जगहों पे, लेकिन फिर उसके लिए काम करो. ये नहीं कि वहीं पर ही रह जाओ, ख्वाब देखे, ख्वाबों में रहना नहीं है, रियलिटी में आके उसके लिए काम करना, ये चीज होती है.
अच्छा चलो, अच्छा चलो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं. तो तुम मतलब तुम दोनों से मैं पूछता हूँ अब, क्योंकि मैं बहुत मतलब मैं मार्केट से इतना क्लोजली रिलेटेड बंदा नहीं रहा शुरू से. तो
खराब चल रही तुम्हारी
मार्केट, खराब चल रही हमारी. तो मतलब बिजनेस साइड से टेक्निकल डोमेन से इतना ज्यादा नहीं रहा, लेकिन फिर भी तो ऐसा कौन सा रोड मैप होगा, हमने जितनी अभी तक डिस्कशन की, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि चलो सही, अगर मैं आइडिया जनरेशन और ड्रीम बिग को या एग्जांपल सेट करने को या मेंटोरशिप को या एजुकेशन को या नॉलेज कहां से गैदर करनी है, इन सारी चीजों को मैं रोड मैप के में कैसे तोड़ूंगा
भाई?
पहला होता
नहीं, नहीं आप बताओ.
अगर बहुत जर्नल कहेंगे ना, तो मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं सॉल्यूशन बयान करूं, तो मैं ये सोचूंगा सबसे पहले तो एक कोई मसला होना चाहिए जिसको आप सॉल्व करने जा रहे हैं. कोई टेक्नोलॉजी की एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए कि यार मैंने ये टेक्नोलॉजी सीखी तो अब मैं इससे कुछ करूंगा.
यार आपने सॉल्यूशन भी ना
तो कोई एक्टिव मसला देखें अपनी कम्युनिटी के अंदर जहां पे भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं. फिर उसके बाद देखें कि आपकी नीश कितनी कितनी है, मतलब
क्या आप कितने नीच हैं.
हाँ कितने नीच है. और फिर What is the value वो they are willing to pay. मतलब software companies के अंदर सबसे ज़्यादा popular model ये है कि हम B2C को sell करेंगे तो हमेशा कम पैसे कमाएंगे, B2B को sell करेंगे, business to business को sell करेंगे.
यार ये थोड़ा सा मतलब ये B2C मुझे गंदे गंदे अल्फाज जो है ना मतलब ध्यान में आ रहे हैं.
Business to customer जब आप कोई send करते हैं ना, तो वो models usually harder to monetize होते हैं, उनसे पैसे कमाना मुश्किल होता है. क्योंकि आपको शायद example पता हो कि Gmail ने एक दफा शुरू किया था कुछ अर्सा पहले कि हम $5 लेंगे जीमेल यूज पे, और सारे लोगों ने कहा बस जीमेल नहीं, हम नहीं यूज करते, जाओ. तो अब वो जीमेल दोबारा से फ्री होगी. तो बी टू सी पैसे निकालना मुश्किल होता है. जो एक बिजनेस ऑलरेडी पैसे बना रहा होता है तो वो अपनी हर जगह पे डोमेन जो है ना एक्सपैंड नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल आप उनको कोई सर्विस दे देते हैं, आप ईमेल सर्विस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, या कोई छोटा सा काम जो उनके लिए एक हैसल है उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इस तरह का कोई इशू उठा के. और फिर आपने अपनी नीच को डिफाइन कर लिया कि कितने लोग जो हैं वो ये प्रोडक्ट बाय करने के लिए तैयार हैं. अब उसके बाद फिर मेरा ख्याल है जो फर्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाएं जिसके अंदर मिनिमम फीचर्स होंगे, वो आप लॉन्च करें, वो आप फर्स्ट फ्यू कस्टमर के साथ बहुत ज़्यादा डीपली इन टच रहें और उनसे पूछें कि आपको हमारे कस्टमर हम लोग के कस्टमर एक्सपीरियंस के अंदर क्या खराबी लग रही है, हमारी प्रोडक्ट के अंदर क्या खराबी लग रही है.
अच्छा मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो मैं ये बी टू सी के अंदर एक एग्जांपल ये कोट कर सकता हूँ कि जो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है ये बी टू सी सर्विस है. मतलब जो स्टार्टअप्स क्राउड फंडिंग से डायरेक्टली स्टार्ट होते हैं, मींस वो अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं कस्टमर को डायरेक्टली.
नहीं मतलब बी टू सी और बी टू बी एक अलग चीज है. मतलब वो तो ये है कि मनी कैसे रेज कर रहे हैं वो.
हाँ मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना, जैसे जैसे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म किक स्टार्टर है जैसे.
हाँ.
तो किक स्टार्टर में क्या होता है कि डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं. तो आइडियली जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है किक स्टार्टर पे वो प्रोटोटाइपिंग फेज से स्टार्ट होता है. मतलब उनके एक प्रोटोटाइपिंग भी नहीं है उनके पास, उन्होंने एक जनरल ग्राफिकल इलस्ट्रेशन बनाई है जिससे वो बता रहे हैं कि हमारा आइडिया क्या है. फिर वो कैरी करते
हैं. दिस इज समथिंग जो स्टार्टअप्स में जिसको बोलते हैं प्रीपेड कस्टमर्स बाय करना. मतलब वो अपनी आइडिया वैलिडेशन के लिए ना आइडिया का कॉन्सेप्ट देते हैं आगे, और फिर जो है ना कस्टमर्स वो वाउच करते हैं कि मैं ये प्रोडक्ट बाय करूंगा अगर ये एग्जिस्ट करेगी. तो ये भी एक स्टार्टअप क्रिएट करने का मॉडल. तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है.
मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा, पिछले क्वेश्चन के ऊपर बाद में आना, पहले इसका आंसर दे देते हैं कि आपको नहीं पता जब आप किक स्टार्टर के ऊपर जब आप प्रोडक्ट लगाते हो ना, तो आपको नहीं पता होता कि कस्टमर कौन है इस वक्त, सही है? वो आप सी ही देख रहे होते हैं, वो आपका तफाक के तौर पर कोई ऐसा आपको कंपनी मिल गई जिसने आपके सारे ही ऑर्डर खरीद लिए, बहुत ज्यादा ही क्राउड फंड कर दिया आपको, सही है? तो वो फिर डिपेंड करता है, आप जब क्राउड फंडिंग में डालते हो ना, किक स्टार्टर का मेरा अपना जो पर्सनल ओपिनियन है वो, मैं कभी भी उसको ज्यादा फंडिंग प्लेटफॉर्म नहीं देखता, मैं उसे मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देखता हूँ हमेशा, सही है? आपको नहीं पता, आपको नहीं पता आपके पास क्या प्रूफ है कि इतनी फंडिंग हुई है, सही है? समझ में आ, आप किसी को प्रूफ नहीं शो कर सकते, क्या पता उनके अपने ही बंदे फंडिंग डाल रहे हो, फिर बहुत ज्यादा इसके दो नंबरियां होती हैं और आपके पास जो है वो दो दो साल बाद प्रोजेक्ट आ रहे होते हैं, हालांकि उनको अगले महीने आना होता है, तो मार्केटिंग टेक्निक है, सही है? तो मैं इसको मार्केटिंग देखता हूँ और मैं इसको कनेक्ट नहीं करता क्या बोलते हैं बिजनेस के साथ। हाँ, इसका इम्पैक्ट एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो हो सकता है बिजनेस के ऊपर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना जो है। हाँ, होता है किसी जमाने में, लेकिन अब जो है ना, जो अब तो आपको पता है अमेज़न की मार्केटिंग, आपको पता है ना क्या क्या फेक रिव्यूज चल रहे
हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं,
सही है, वही चीज लगती है मुझे एग्जैक्टली।
मैं एक और बात बताता हूं, इसमें थोड़ी सी चीज मैं ऐड करूंगा, क्योंकि मैं स्टार्टर को और इंडीगोगो और डिफरेंट स्टार्टर प्लेटफॉर्म्स को काफी जो है ना, मतलब क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करता रहता हूं और इन्वेस्ट भी करता हूं काफी, मतलब पैसे नहीं है, दाल रोटी खा लेता हूं कभी कभार, लेकिन मैं इन्वेस्ट कर देता हूं। तो
10 बजे के बाद भी काम करते हो तुम इसका मतलब?
नहीं, ऐसे वाले काम नहीं करते।
तुमने बताया था कि भूख में 10 बजे के बाद काम होता है
भाई, 10 बजे का रेवे खुलती है, फैसिलिटी है, आप किसी टाइम भी चले जाएं।
तो वो भी तो एक फैसिलिटी है,
फैसिलेशन है ये, वो फैसिलेशन मतलब आपको कहीं और से भी मिल सकती है।
चले कंटिन्यू।
खैर, मैं तो किक स्टार्टर का जो है ना, अब आजकल एक टर्म निकल आई है कि अगर आपको स्पैम करना है क्राउड फंडिंग में तो आप इंडीगोगो पे चले जाओ, और अगर आपने जेन्युइन ही प्रोडक्ट डिलीवर करना है तो आप किक स्टार्टर पे चले जाओ।
अच्छा, मैं यहाँ पर स्टॉप करूंगा तुम्हें, ये अदर वे अराउंड है मेरे हिसाब से, लेकिन
मेरे एक्सपीरियंस अदर वे अराउंड रह रहा है अभी तक, क्योंकि किक स्टार्टर से अब तक मैंने एक ही प्रोडक्ट मंगवाई है, क्योंकि एक मंगवाई है तो मैं ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट लेट भी हुई थी तो किक स्टार्टर को मैंने डायरेक्ट ईमेल की, उन्होंने उस पर एक्शन ले लिया। लेकिन इंडिगोगो के साथ ऐसा नहीं हो रहा, इंडिगोगो वाले किसी किस्म का रिस्पांस नहीं दे रहे, वो बार बार यही बोलते हैं, या तो वो रिस्पांस नहीं देते या वो यही बोलते हैं कि आप कैंपेन ओनर से, क्योंकि आपने क्योंकि टर्मिनोलॉजीज पे ओके, मतलब हमारी मतलब वो तो मेंटेलिटी मेरी भी गंदी है ना पाकिस्तान वाली, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज आती है और वो कंडीशन आती है जो भी भला बस उस पर टिक ही करना होता है, तो बस मैंने भी टिक कर दिया
था।
वो यही होता है, अबे हट ना, तू तो सामने से हटना, तो बस वो यही हुआ। तो लीगली मैंने जब पढ़ा उसको बैठ के, जब ज़ारा बंदे के पैसे डूबते तभी पढ़ता है वो, हमारे पाकिस्तान की तो लॉजिक यही है, मैंने भी तभी पढ़ा, लेकिन डूबे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब इन पेंडिंग है, देखो रिसीव होता है नहीं होता, लेकिन ये है कि इंडीगोगो से मेरे पास 5 प्रोजेक्ट अब तक डिलीवर हो चुके हैं,
डिलीवर हो सकते हैं माशाल्लाह, तो इसका मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है।
और एक डिलीवर तो ऐसे हुआ है कि उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो डिलीवर होगा दिसंबर 2020 में, डिलीवर होगा, उन्होंने मुझे फंड करने के एक हफ्ते बाद प्रोडक्ट मेरे घर पे था।
नाइस नाइस, सही, मतलब अच्छी एग्जांपल्स भी और डिफरेंट कस्टमर्स डिफरेंट एक्सपीरियंस, मतलब ये है
कहने की बात ये कि स्कैमिंग हर जगह हो सकती है, और ये बात नहीं है कि यूरोप के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं तो यूरोप में स्कैम नहीं हो सकता। अगर आप पेपैल की एग्जांपल लो तो मेरे साथ एक स्टार्टअप में मैंने इन्वेस्ट किया, मतलब मैं एक जस्ट एन एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, और वो चाइनीज स्टार्टअप था, सॉरी टू से बट लेकिन उसके अंदर हुआ ये कि उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट भेजा एक महीने बाद, मैं कह यार मतलब मुझे तो प्रोडक्ट रिसीव हो गई, तो उसकी पेमेंट पेपैल के थ्रू हुई थी, क्योंकि वो छोटा स्टार्टअप प्लेटफॉर्म था, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, खैर
ले लो, कुछ नहीं होता।
नहीं यार, असल में वो मेरा मेरी नाम अजीब सा था, सच बात है, वो इंग्लिश नेम नहीं था। दूसरी चीज के यार मैंने मतलब मार्केट स्टडी की नहीं और आंखें बंद कर इन्वेस्ट कर दिया। अब हुआ ये कि पेपैल बीच में इन्वॉल्व था, तो पेपैल भी कोई मतलब हमारे पाकिस्तानी समझते हैं कि पेपैल बहुत साफ सुथरा है, अब वो पेपैल बीच में इन्वॉल्व था। अब हुआ ये है कि पेपैल वालों ने मुझे बोला कि अगर आपके पास प्रोडक्ट जो डिलीवर हुआ वो बिल्कुल ही डिफरेंट, मतलब मैंने ऑर्डर क्या किया और फॉर सपोज मुझे उठा के भेज दिया, मतलब थैलियां भेज दी डब्बे में से, वो दराज वाला स्कैम ना, वो सेम मेरे साथ हुआ है यूरोप में।
तुमने भी वीडियो बना के रोना था, क्या पता उधर का बंदा आके
नहीं, फिर मैं यूरोपियन स्टैंडर्ड्स और ये और वो चीज, मतलब मैंने पेपैल खोला यूरोप के स्टैंडर्ड्स और फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशंस, तो तो मुझे पता लगा कि वो पैकेज मुझे वापस भेजना है, तो वो टोटल प्रोडक्ट थी 2200 यूरो की शिपिंग मिला के, और उसको वापस भेजने के मुझे 11 यूरो मिल रहे थे, मतलब 11 यूरो पे करने पड़ रहे थे, और पेपैल मुझे वो रिटर्न भी नहीं कर रहा था, क्योंकि पेपैल की पॉलिसी थी कि आपने प्रोडक्ट वापस भेजनी है, उसके बगैर आपका रिफंड का केस ओपन नहीं होगा।
भाई आप ये मार्केट स्ट्रेटेजी चेक करना है, उन्होंने आपको प्रोडक्ट भेजी इसलिए उनको पता था वापस आएगी नहीं है, दिस इज मार्केटिंग, दिस इज स्ट्रेटेजी।
तो मतलब स्कैमिंग हर जगह है, तो मैं यूरोप की मिसाल दे रहा
हूं, मैं इसको स्कैम नहीं बोलूंगा जो मैंने किकस्टार्टर वाली बात की, मैं इसको बोलूंगा ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ये स्कैमिंग नहीं है, वो प्रोडक्ट आपको भेजेंगे सही, ये नहीं कि प्रोडक्ट नहीं भेजेंगे, लेकिन जो डेडलाइन होती है वो बहुत मैक्सिमम टाइम्स जो है वो मीट नहीं हो पाती है, और कभी कभी जो है वो सिर्फ ऐसा मार्केटिंग देख रहे होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट के ऊपर कितनी हाइप क्रिएट हो रही है, तो उस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं।
लेकिन जो ये क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अगर आप इनका पोर्टफोलियो पढ़ो और जो प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो पढ़ो, तो कोई भी किसी को भी ये इजाजत नहीं होती कि वो ये लिखे कि वी आर प्रॉमिसिंग यू, चीजी टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं, मतलब एक्रोनिम्स यूज किए जाते हैं घुमाने के लिए, लेकिन रियलिटी ये होती है कि हर जगह टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है कि इवन जरूरी नहीं है कि आपको प्रोडक्ट मिले भी, पता है आपको
काफी सारी चीजें तो बताई थी कि एमवीपी होनी चाहिए, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट होनी चाहिए, और जो है तो इसके अंदर बस कुछ चीजें मैं ऐड करूंगा जो कि मुझे बहुत बदर करती है, उसके बाद फिर अहमद भाई की तरफ आएंगे, उसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। देखिये सबसे पहले तो आपके अंदर ना एक पैशन होना चाहिए, सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्पार्क होना चाहिए, बप्पा जानी वाला स्पार्क नहीं दूसरा वाला, सही है, आपको फेलियर्स के लिए पहले से जो है ना प्रिपेयर रहना चाहिए, ये नहीं कि आप अपने सपनों का सही आगे बैठे हैं, तो ये चीज एक, और क्लियरिटी होनी चाहिए आपके आइडिया के अंदर, आप करना क्या चाह रहे हो, अगर आपसे कोई पूछे ना कि आपका प्रोजेक्ट क्या किस तरीके से बेचोगे, आप उसको डिफाइन कर सको क्लियरली कि मेरे ये 10 कस्टमर्स हैं, मैं इनको बेचूंगा,
क्लियर बोल, क्लियर
मेरे ये 10 कस्टमर्स,
सुपारी निकाल के बात कर
आप जो है वो क्लियरिटी होनी चाहिए आपके, क्या बोलते हैं, सब मतलब आप क्लियर हो अपने आइडिया के ऊपर, और अगर कोई आपसे आगे पूछे तो आप उसको डिफाइन कर सके कि हाँ यार ये मेरे 10 कस्टमर्स हैं, इनको मैं बेचूंगा, ये खरीदेंगे ही खरीदेंगे, इतनी क्लियरिटी होनी चाहिए आपके, यहाँ से पैसा आएगा इस तरीके से आएगा, और जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसका रिटर्न किस तरीके से आएगा, जैसे मोनेटाइजेशन की आपने बात की कि जब उनको पता ही नहीं होता कि एक प्रोडक्ट बनाई है उस पर इतना इन्वेस्ट कर दिया अपनी प्रोडक्ट के अंदर कि अब उनको ये पता ही नहीं है कि वापस किस तरीके से आएगा, रिटर्न कैसे आएंगे हमारे, तो ये चीज, और मेरे ख्याल से ये चीज इंपॉर्टेंट। अच्छा एक और पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि हमारे जो पाकिस्तानी स्टार्टअप्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ओरिएंटेड होते हैं, कस्टमर ओरिएंटेड नहीं होते, सही है, मतलब प्रोडक्ट के अराउंड वो इतना टाइम स्पेंड कर देते हैं कि जब उन्हें ही नहीं पता होता कि कस्टमर क्या चाह रहा है, सही, तो जेफ बेजोस की आप एग्जांपल दे रहे थे अमेज़न, वो बोलता है भाई हमारा बाप है कस्टमर, हमारा किंग कस्टमर इज द किंग, वो ये बोलता है, तो कस्टमर को इतनी अहमियत दी जाती है। आप एक चीज़ अमेज़न से खरीदो, आप इसका रिटर्न कितना ईजी आप चेक कर सकते हो ना, आपने देखा इस्तेमाल किया नहीं, जब यहाँ पर शूज मंगवाता हूँ मैं 4-5 जो है ना पेयर मंगवाता हूँ अपने पास, उनको पहन के चेक करता हूँ, उसके बाद फिर इजीली वो रिटर्न हो जाते हैं, सही है, पाकिस्तान में करके दिखाते हैं, वो बोलेगा भाई खरीदा हुआ माल वापस नहीं होता
जबकि
वापसी नहीं, तो ये बहुत बहुत खराब माइंड सेट है जिसको हमें ठीक करना पड़ेगा अपने स्टार्टअप कल्चर के अंदर, तो ये मेरा जो है वो क्लोजिंग रिमार्क थे इस चीज पे।
जबकि मैं एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ तुम्हारी बात में, रिलीजियसली हमारे लिए ज्यादा मतलब जो मुस्लिम्स हैं मेजोरिटी पाकिस्तान में, अगर मैं एग्जांपल दूं तो
ना भी देखूं तो
वैसे भी करना चाहिए,
इसको मार्केटिंग एथिक्स कहते हैं ना, आप इसको किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखो, आप इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ना, मतलब एक मार्केटिंग एथिक्स के रूल्स हैं जो मौजूद हैं।
तो अहमद अब्दुल्ला भाई फिर इसको क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं, आपके कोई फाइनल रिमार्क्स इस पे?
फाइनली मैं एक चीज लास्ट में पूछना चाहूंगा, उसके बाद तुम फाइनल कर लेना।
चलो पूछे
यार, मतलब जर्मनी आने के बाद कोई एक ऐसी अनहोनी चीज, कोई यादगार वाकया, कुछ भी जो इस छोटे से वक्त में समा सकता है या उससे जो है आवाम को, आने वाली नई पोत को जो है वो कोई मैसेज मिल सकता है?
मैं आने वाले लोगों को जो ये मैसेज करूंगा कि बी क्लियर कि आपने यहाँ आके क्या करना है. आप यहाँ मास्टर्स में इसलिए इनरोल हो रहे हैं कि आपने बाहर आना है, या आप मास्टर्स में इसलिए इनरोल हो रहे हैं कि आपने बाहर आके पढ़ना है, क्योंकि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं. मैं एक मोर एंड मोर रिसेंटली ये ट्रेंड देख रहा हूँ कि लड़के सिर्फ निकलने के लिए पाकिस्तान से जो है ना मास्टर्स के अंदर अप्लाई करते हैं, और जिसकी वजह से वो फुली मोटिवेटेड फुली कमिटेड नहीं होते मास्टर्स कंप्लीट करने में. तो वो या तो आके ऑड जॉब्स करना शुरू कर देते हैं या इधर उधर जॉब्स के लिए अप्लाई करना. अगर आपने डायरेक्ट जॉब्स पे आना है तो आप डायरेक्ट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पर मार्केट कम अज़ कम आई टी सेक्टर के अंदर इतनी ओपन है और इतनी इतनी अपने आर्म्स एक्सटेंड करती है कि आप आ जाएँ मतलब फुल टाइम एम्प्लॉय के तौर पर भी, तो वो इशू नहीं है. कंसिडरिंग कोरोना वायरस आई थिंक आजकल मार्केट थोड़ी सी स्लो है, लेकिन वैसे ओवरऑल जो है यहाँ पर हायरिंग होती रहती है.
नहीं तो आपके साथ आपके पास कोई मतलब कोई अपना कोई वाकया नहीं है इसमें मतलब इससे कनेक्टेड कि कुछ हुआ हो? क्योंकि मुझे बहुत सारे वाक्य पता है आपके, हमारा बहुत लंबा है, मतलब मैं चाह नहीं रहा कि मैं चूज करूं वो वाक्य.
अगर वो पॉडकास्ट में नहीं बताना चाह रहे तो हम बाद में कर लेते हैं.
हाँ,
18 प्लस
भाई भाई मतलब आप सही तरह प्रोनाउंस करो पॉडकास्ट.
नहीं वो फिल्टर से खराब होता है, वो लगा हुआ
पॉडकास्ट
बगैर
एक्साइटेड हो के या डिल्यूजनल हो के मैं ये बना दूंगा मैं वो कर दूंगा, जंप ना करें मार्केट के अंदर. बी क्लियर कि आपने क्या अचीव करना है, कितने टाइम में आप कितना टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उस चीज़ को अचीव करने में, और टेस्ट योर प्रोडक्ट. आप मतलब वर्जन टू वर्जन थ्री ना बनाने बैठते हैं, पहले पहले वाला वर्जन जो है वो टेस्ट कर लेंगे ये चलता भी है या नहीं चलता, और ये स्केलेबल है या नहीं है. क्योंकि अक्सर अवकाश जो है वो एक्साइटेड होकर बंदा काम शुरू कर देता है. ये मैं एग्जाम्पल देता हूँ जल्दी से. मुझे नहीं पता फैजान को शायद मालूम हो, एक वो चलते हैं यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी नहीं मैं कहूँगा मतलब स्टैंड अप सेमिनार्स होते हैं, उनको बोलते हैं फक अप नाइट्स. और उसमें लोग जो है ना वो अपने फेलियर बिजनेस फेलियर्स जो है ना वो आके डिस्कस करते हैं. तो कल मैं अटेंड कर रहा था, तो उसमें एक बिल्कुल इसी तरह की बात जैसा फैजान बता रहा था कि एक बंदा था वो उसने ऐप बनाई जो कनेक्ट करती थी ब्रेमन के जो ये है ना क्या नाम है ब्रैंडनबर्ग के जो फार्मर्स हैं उनको बर्लिन के लोगों के साथ कि उनको कौन सी सब्जियां चाहिए. और उन लोगों ने पहले वर्जन वन बनाया और वो नहीं चला, और फिर कहता कि मैं इतना एक्साइटेड था अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर, यार ये टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल ठीक है. उन्होंने कहता हम लोगों ने वर्जन टू बनाया, हम लोगों ने 8-9 months लगाया उसको क्रिएट करने में, और कहता वो फिर भी नहीं चला. और कहता कि ये सब करने के बाद हमने रियलाइज़ किया कि सबसे बड़ा ब्लंडर जो हम लोगों ने मारा है, हम उन जो फार्मर्स हैं उनके साथ जाके बैठेंगे कि उनको ये चीज़ यूज भी नहीं आती कि नहीं आती. तो वो कहता कि हमें 8-9 months के एक्सपीरियंस के बाद पता लगा कि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी. तो नो योर पीपल के आप जहाँ पे प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, ये मेन टेक अवे होगा उनका आज इंपॉर्टेंट से.
तो देखते हैं भाई फिर हमारी बातों से कुछ क्लियरिटी आती है आपकी थॉट्स के अंदर या नहीं, तो फिर इसको यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं. थैंक यू सो मच अहमद अब्दुल्ला हमारे साथ रहने के लिए, और शेरी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को होस्ट रहने के लिए. और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट के अंदर. सी यू, बाय बाय.